औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम एक गो थ्रू के तौर पे तो लेसन को कर चुके, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसके बीच में से चंक्स की सूरत में हम देखेंगे। पहली बात देखिए कि ये पहली स्टोरी है, यानी तरतीब के एतबार से देखें तो हम कुरान पाक की पहली कहानी पढ़ रहे हैं, और कुरान पाक बहुत सारी कहानियों का मजमू है। हत्ता के सूरत कसस में वाक़ यूसुफ को अल्लाह ताला ने अहसनुल कसस कहा। तो एक बात इस सबक पे गौर व फिक्र के बाद ये समझ आ गई कि स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट वे टू टीच। अपने बच्चों को अगर आप कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो वो कहानी की सूरत में ही सिखा देंगे तो फ़ायदा होगा। अगली बात नोट कीजिए कि ये दुनिया की सबसे मशहूर कहानी है। ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, तीन ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जिन्होंने इस कहानी को मजहब के तौर पर सुना। बाकी लोग, यानी एथियस कह लीजिए, बुद्धास कह लीजिए, हिंदूस कह लीजिए, वो किसी न किसी तरह से इस कहानी को जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, तो आप कह सकते हैं आदम और इबलीस की कहानी। और वो क्यों फेमस है, इसकी वजह यह है कि ये हमारी कहानी है, ये मेरे और आपके लिए है। नेक्स्ट थिंग यह है कि भाई काला रब्बुक लिल मलाइकती, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा तो ये कौन से फरिश्ते थे? तो रिवायात से पता चलता है कि, और ये देखा जाए तो ये अल्लाह के बिल्कुल करीब रहने वाले फरिश्ते थे। मलाइका कौन से थे? ये अर्श को उठाने वाले फरिश्ते थे। और इनका खास एक मुकाम है कुरान में, किराम बररा का लफ्ज भी आता है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो हुक्म दिया, और कुरान के हुक्म से तो हमें फौरन समझ आ रहा है कि फरिश्तों ने फौरन उस काम को कर दिया, क्या बाइबल में भी ये कहानी मौजूद है? ये अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैं आपको सारी बातें सोच के साथ दे रही हूँ कि आप जब नॉन मुस्लिम्स के साथ ये कहानी डिस्कस करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने इस कहानी का आज क्या भतंगड़ बनाया। तो पहली बात है कि बाइबल के अंदर, यानी अगर आप इस कहानी को देखें तो आज की बाइबल में ये कहानी नहीं है, पहले थी, तहरीफात में निकल गई। इस वक्त की बाइबल और कुरान की इस कहानी में थोड़ा सा आपको मैं ताल्लुक पैदा करना चाहूंगी। आप देखिए कि हमने कुरान पाक में ये कहानी आराम से पढ़ ली कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने इस बात पे थोड़ा सा सवाल किया था जलु फीहा के बाद, और साथ ही फसजदू कर दिया। बाइबल में जो कहानी मारूफ की गई, और ये वर्बल है, जिसको आप और मैं कहते हैं ना जरबुल मिसल, या आप हम अपनी जुबान में कहते हैं लोक दास्तानें। हीर रांझा को हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम अपने कल्चर में शुरू से उनके नाम सुनते आ रहे हैं। इसी तरह हमने कभी रोमियो जूलियट को नहीं पढ़ा, लेकिन हम उनके नाम जानते हैं ना। तो हर कल्चर में कुछ चीज़ें वर्बली, जुबानी तौर पे आगे आती हैं। तो बाइबल के अंदर जो कहानी मारूफ की गई है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने उन सबको जला दिया, फिर और फरिश्ते पैदा किए, फिर उनको कहा कि तुम आदम को सजदा करो तो उन्होंने भी इनकार किया। यानी उन्होंने दो तीन दफा का तस्करा किया हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम के इस सजदे के इनकार पर फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हला के फिर उसके बाद एक खास कौम पैदा हुई। हालांकि कुरान क्या कहता है फरिश्तों के बारे में, ला यासून मा अमरल्लाहु बिही, जो काम अल्लाह उनको कह दें वो इस काम को नहीं रोकते। अगर आप देखना चाहें तो एक रिवर्ट है जेफरी नाम पे, अगर आप यूट्यूब पे जेफरी का नाम डालेंगे, अगर आप में से कोई जानते तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, रिवर्ट थे इन्होंने अपने कबूले इस्लाम की जो कहानी लिखी है, आप अगर इनका एक लेक्चर सुने जो किसी जगह से भी मुझे फाइंड आउट हुआ, पर्पज ऑफ लाइफ, अब लिखिए जाके यूट्यूब में पर्पज ऑफ लाइफ बाय जेफरी, वो अपनी जो इस्लाम की तरफ रिवर्ट होने का ताल्लुक लिखते हैं ना, वो ये कहानी थी। खुलासा है, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वो उसमें बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छी खातून थी, नर्स थी, इंतहाई मेहनती, लविंग, केयरिंग, जो भी किसी औरत में खूबी हो सकती है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा बाप जो था ना वो चरसी था, शराबी था। यानी माँ कह लीजिए कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी तो लोग उसको सेंट कहते थे, यानी बड़ी पायस है, लेकिन मेरा बाप इतना बुरा, मेरी माँ को मारता था, कूटता था। कहते हैं कि मैं उस घर में पला बढ़ा तो मेरे दिमाग में कहता वेयर इज गॉड, ये कैसा ना इंसाफ खुदा है, नऊज़ु बिल्ला, कि मेरी इतनी अच्छी माँ एक इतनी अच्छी औरत को इतना बुरा शौहर दे रहा है। कहता है कि मैं अपने घर के माहौल की वजह से अल्लाह से बिल्कुल दूर था, बल्कि मैं एथियस्ट हो गया। बात समझ गए, हालात इंसान को अल्लाह से भी बदगुमान कर देते हैं, लोगों की बातों अब क्या करते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर कहते हैं कि मैं बहुत नफरत में पैदा हुआ। मैं कहता था कि मेरी माँ जैसी अच्छी औरत के साथ इंसाफ नहीं हुआ और मेरे बाप जैसा बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म देखिए कि इसी कैफियत में थे तो कहते हैं कि किसी मौके पर मुझे किसी ने कुरान का तर्जुमा दे दिया, बुक दे दी, ऐसे ही कुरान थी, ट्रांसलेशन था। कहते मैं मानता कोई नहीं था उस वक्त तक, मेरा खुदा से यकीन ही उठ गया, जैसे बददिल हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कहा, ऐसे ही मैं किसी का बोर हो रहा था तो मैंने वो कुरान खोला तो बस ये शुरू से शुरू किया, सूरत फातिहा, हाँ हाँ कोई गॉड नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यानी वो कहते हैं मैं गॉड से ऐसे बातें करता था, तो कोई नहीं है, कोई तेरी तारीफ नहीं, समझे आप टोन। होते होते कहता है ये मैं पढ़ता गया, फिर बनी इसराइल की बातें शुरू में, छोड़ो कोई रिलीजन नहीं होता। कहता है जब मैं इस कहानी पे आया बस फिर उसके ना वो चारों तबक खुल गया। आपको पता है किस आयत पे उनकी तवज्जो गई? कालू अत जलुफी हा मैं युफसिदु फी हा वयस्फिकुद्दिमा, यस ये मेरा बाप है। यानी उनको अपने बाप के सारे गुनाह इसमें दिखे, यानी अमेजिंगली उन्होंने बयान किया, आप खुद सुन के देखें। वो कहते हैं और जब इसमें पढ़ा, ओ फिर लो जी ये गॉड देखो कितनी जल्दी रूठ जाता है। आदम ने किया हुआ एक दरख्त का फल ही नहीं चखा, फल चखा नाराज हो गया, और ये हुआ वो, लेकिन आगे पढ़ा फताब अलैहिन्नहु अत्तवाब, ये कितनी जल्दी मान जाता है गॉड। यानी इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि आप इंजॉय करें कि जब कुरान किसी के हाथ में आता है ना तो उसको अपनी जिंदगी की कहानियां उसमें से दिखती हैं। तो लिहाजा कुरान पाक के ये वाकयात और किस्से बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं। दूसरी चीज जो बाइबल ने आज इस कहानी का किस्सा मोड़ दिया वो क्या है? वो कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में सजा के तौर पे आया है। कुरान क्या कहता है? फैमयातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया। एक जुमला लिखिएगा, जम है इस सबक का, कि इंसान इस दुनिया में हिदायत की तलब में आया। इस दुनिया में इंसान के आने का मकसद हिदायत के इल्म को पाना। मैंने इसको दोबारा देखा और अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हुई, हो सकता है आगे जहां फिर ये वाक्य आएगा आपको फिर मैं इन आयतों के कुछ रेफरेंसेस लिखा दूं। इंसान की जिंदगी का जो मकसद यानी पर्पस ऑफ लाइफ जो इस वाक्य को पढ़ के समझ आ रहा है ना, वो इल्म हासिल करना। आगे आप देखेंगे तलक्का आदम की बात में भी थोड़ी सी बात आएगी, यानी इल्म हासिल करना ही हिदायत के रास्ते का संगे मील है। माइलेज स्टोन टू गाइडेंस इज टू सीक नॉलेज, जिसको मेरी बात जो भी समझ आए वो लिख लीजिए। इल्म हासिल करना एक ऐसी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इंसान के सिवा किसी को नहीं दी। अब इसमें दोनों इल्म, इल्म की दो किस्में हम पीछे से पढ़ रहे हैं ना, एक दुनियावी इल्म और एक दीनी इल्म। दीनी दुनियावी से मुराद एक नहीं कि गुनाहगार करने वाला इल्म और एक नहीं करने वाला इल्म, नहीं, दुनियावी इल्म वो जो इस दुनिया की चीज़ों से हमारा आपका मुतल्लिका है। अल्लाम आदम अलस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, ठीक है, तो वो भी ठीक है। लेकिन दूसरा इल्म कौन सा है? जो के फ़ाइम मयातियन्नकुम मिन्नी हुदन। इन दो उलूम को जमा करना बंदे को मकसद हयात सिखा देता है। इसी से फिर तस्वीहात जिंदा होती हैं, इसी से बाकी सारी चीजें जिंदा होती हैं। तो वो कहते हैं सजा के ऊपर आया, चलिए मान लेते हैं। जरा एक नज़र तो बाहर डाल के देखिए दुनिया की खूबसूरतियों पे, फलों पे, दरख्तों पे, सब्जियों पे, सब पे देखिए, क्या कोई सजा में आया हुआ शख्स यानी प्रिजन में आया हुआ शख्स इतनी खूबसूरत नेमतें पा सकता है? क्या कमी है इस दुनिया में? ये दुनिया बोल बोल के बता रही है कि इंसान इस दुनिया में सजा के तौर पे नहीं आया। आपने पढ़ लिया फताब अली, अल्लाह ने इंसान के गुनाहों को या आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को माफ किया फिर दुनिया में भेजा, तो बात समझ गए कि हम सजा पे नहीं, वरना ये इंसान की इज्जत के खिलाफ है। मसला आप देखिए कि आप यहां आए, चलिए मैं आपको इसी से मिसाल दे देती हूँ, आप यहां आए, क्या ये आपके लिए कोई सजा है? कितने लोगों ने ये सजा समझ के कबूल किया कोर्स? ये सुबह उठ के अपने आप को सजा देते हैं कि सुबह सुबह उठ के नहाना धोना तैयारी करनी, नाश्ते पानी करके उलटते पुलटते वापस इधर पहुंच जाए, क्या ये सजा है? नहीं, आप यहाँ सजा के तौर पे नहीं आते, आप यहाँ इम्तिहान के तौर पे आते हैं कि मैं देखूं कि अभी तक 25, 30, 40, 50 साल की जिंदगी में जो मैंने सीखा है अब ये कुरान मुझे मजीद क्या सिखाता है, राइट? तो हम यहाँ नेमतों में, और आप देखिए दुनिया इतनी तो खूबसूरत है, आप कह सकते हैं कि ये दुनिया तो प्रीव्यू ऑफ जन्ना है, ये तो एक ट्रेलर है। हाँ असल वहां मिलेगा, फला तआलमु नफ्सु मा उखफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों के ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने सामान क्या तैयार किया है। लेकिन इस दुनिया की नेमतों को तो अल्लाह सुबहाना तला ने एक खूबसूरत मेयार बनाया। देखिए अगर यहाँ परिंदे ना होते तो अल्लाह तला क्यों कहते कि लाह मन तईरा मिम्मा यश्तहून। सूरत वाकया में पढ़ते हैं कि वहाँ परिंदों का गोश्त खाएंगे। अगर इस दुनिया में नहरें ना होती तो अल्लाह तला कैसे कहते तजरी मिन तहती अलनहार। ठीक है, क्यों सिखाया कि रब्बन आती ना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन। ये दुनिया के माइश सूरत आराफ में वाकया इबलीस के फौरन बाद की आयतों में आता है कि वजालना लकुम फीहा माइश। ये दुनिया माइश मईशत है, लाइवलीहुड है, तुम्हारा सब्सटेंस है, तुम इस दुनिया में रहकर जियोगे। तो नतीजा क्या निकला कि ये बात हो गई। तीसरा एक और डिफरेंस है, बाइबल कहती है कि हव्वा ने आदम को और फिर आदम को इबलीस ने बहकाया और इबलीस ने वसवसा डाल दिया। कुरान क्या कहता है, फ़अज़ल्लाहुमा, बस दोनों को बहका। ये लफ्ज़ अज़ल्ला बहुत खूबसूरत है, पीछे मैंने इसको छेड़ा नहीं था लेकिन जिक्र कर दिया था। आप देखिए कि हम भटकने के लिए या फिसलने के लिए, पाँव के फिसलने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ देखते हैं ना, जिसमें एक हमने देखा दौलीन, दौल होता है, यहाँ ज़ा है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, आप एक शख्स है कि फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में 10 सीढ़ियाँ हैं। अब आप ऊपर खड़े हैं, जल्ला पता क्या है, 10वीं सीढ़ी से आपका कदम 9वीं पे आना, दैट इज जल्ला। यानी जल्ला किसको कहते हैं, पहला कदम फिसलना, द फर्स्ट सिन यू मेड, ये होता है वसवसाए शैतान की वजह से। और क्या ऊपर से गिरने वाला 10वीं से 9वीं सीढ़ी पे आके खड़ा हो जाता है, नेवर। वो फिर रोल डाउन होता, फिर वो 9वीं से 8वीं, 8वीं से 7वीं 6वीं, और वो जमीन पर पटक के गिरता है। पहला झटका जो किसी ने धक्का दिया वो आपको आखिरी से सेकंड लास्ट सीढ़ी पे ले आया, वहां से आप खुद फिसलते हैं। ये है शैतान का काम। ओनली शैतान मुझे और आपको एक छोटा सा पुश देता है, इसी को वसवसा कहते हैं। कर लो ना, चख लो ना, देख लो ना। तभी तो आप देखिए सूरत इब्राहिम की आयतों में आप पढ़ेंगे आगे जाके, शायद 26-27 आयत है कुछ, कि शैतान क़यामत के दिन कहेगा फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, मैंने तो बस एक आइडिया दिया था, काम बाकी सारे तुमने खुद किए। इन्नी दाउतुकुम, मैंने दावत दी थी, तुम एक्सेप्ट ना करते। तो जब बंदा शैतान के हाथों में अपने आप को देता है तो बस शैतान उसको हल्का सा धक्का देता है, उसके बाद वो फिर पीछे चले जाता है। अब जब इंसान गिरता है तो फिर गिरते गिरते आखिर फिर वो तह में गिरता है। इसलिए याद रखिएगा एक बात, हमेशा किसी हिदायत के सफर को पहले मोड़ से छोड़ता हुआ डरे। कैसे, बात मुश्किल है लेकिन बात आपके ऊपर ही आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ। आप हफ्ते में 5 दिन आते हैं, आप कहते हैं 5 दिन आना बड़ा मुश्किल है, 4 कर दें। देखिए मैं बहुत शऊर से ये बात कह रही हूँ, मैं ना इस वक्त गुस्से में हूँ, ना मैं खुश हूँ, ना मैं इमोशनल हूँ, ना मैं जज्बाती, मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हूँ, रिलैक्स्ड। मैं इस लफ्ज़ की खूबसूरती पे आपको लेके जा रही हूँ। 5 से 4 दिन पे खुद को लाना अपनी मर्जी से, यानी एक होता है हालात ही ऐसे क्रिएट हो जाए वो और बात होती है, ये अपनी चॉइस है। आप कहते हैं ना बहुत मुश्किल है 5 दिन आना, आप ऐसा करें इस कोर्स को 4 दिन का कर दें, ये 5 से 4 अजल्ला होगा। बात वाज़े, आपने सिर्फ 1 दिन काम कराया है, फिसलते फिसलते 4 दिन बाकी भी आपके फोकस्ड आप नहीं रहेंगे। या दूसरी सूरत आप ये कह लीजिए कि आप कहते हैं कि कोर्स 5 दिन का लेकिन मैं सिर्फ 4 दिन आया करूंगी, सेम थिंग होगी। आधी चीज लेने वाले कभी भी आधी भी नहीं ले पाते, पूरी तो कहां लेनी थी। हिदायत की डोरी को जब बंदा हल्का सा ढीला करता है ना तो हाथ से छूट जाती है। बस आप देखिए कि आपकी चूड़ी है ना, यानी बाजू और हाथ के बीच के साइज की चूड़ी होती है ना, ऐसी है ना। देखिए बाजू आपकी हो सकता है 2 इंच की हो, हाथ आपका 3 इंच का है, चूड़ी कितने इंच की लेते हैं, 2.5 की। क्यों, 2 की लेंगे तो हाथ से नहीं गुजरेगी, 3 की लेंगे तो हाथ से गिर जाएगी। अगर आप, ये मेरी चूड़ी खुली होती तो मैं यूं करती तो ये चूड़ी नीचे गिरती, तो क्या किया, इसको मैंने 2.5 का कर दिया। क्यों कर दिया कि इधर से जरा सा मैं पुश कर लूंगी, ये जो पुश है ना ये जरूरी है जल्लाहुमा से बचने के लिए। शैतान आपको आगे बड़ा ख्याल कराएगा, देखो तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है, ये चूड़ी नहीं गुजरेगी, फिर तुम्हारा हाथ छिल जाएगा, फिर तुम बीमार हो जाओगी, फिर रोटी कैसे पकाओगी। तो आप कहते हैं चुप, मैं इसको दबाती हूँ, शाबाश, वो देखो उतर गई, अब एक दफा अंदर चली गई ना, अब ये सिक्योर है, अब मैं ऐसे नहीं उतार सकती कि मैं सो रही हूँ और मेरी चूड़ी गिर जाए। बस ये मिसाल जहन में रख लें, आप तब सिक्योर है जब आपने शैतान के इस लूप होल को पहचान लिया। अक्सर लोग मेरे से भी ये बात पूछते हैं, आज भी रास्ते में ये लोग पूछ रहे थे, तो मैं इनको भी अभी जवाब दे दूं कि मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ईमान ऊपर लगता है कभी नीचे, कभी हम भाग के निकियां करते हैं कभी कुछ, लेकिन आपके साथ हम रहते हैं तो आप हमें हमेशा एक जैसी लगती हैं, हालांकि ये हमेशा मेरे साथ नहीं होते हैं। जाहिर देखने में हम सब सारा दिन भी साथ हों फिर भी हम कुछ वक्त अलग हैं, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, सफ़र, हजर, ईद, खुशी, गम, गर्मी, सर्दी, बीमारी, वही बंदा अपनी टोन में रहेगा कि जो इस अजल्ला से बच गया। वो कहता है तुम रूठे हम झूठे, हम तो इतने कमजोर हैं। इस शैतान को आप जितना ज्यादा अपने से दूर करेंगे ना, होश होश मेरे पास ना आना, क्योंकि इसने आपको सिर्फ एक छोटा सा कहना है, छुट्टी कर लूँ आज। मैं भी छुट्टी कर सकती थी, यकीन करें मेरे पास तो रोज पॉइंट्स मौजूद हैं छुट्टी करने के, और एक दिन मैंने छुट्टी का इरादा किया, शैतान पीछे धक्का दे के फिर छुप जाएगा, फिर आके वहीं बैठ जाता है। जैसे कई लोग हैं ना कत्ल करके तो आके फिर बैठते हैं, किसी का मुझे सुनाया किसी ने कि उसके सगे दोस्त ने उनके बाप को कत्ल किया, और कत्ल करके तो बाद में आके उन्हीं के होटल में खाना खाने लग गया, और एक दो दिन आया ढूंढ रहे हैं किधर गया, वो नहीं मिला, चोर कौन है। आखिर में लोगों ने पकड़ा, कहा जो वहां काम करते थे वर्कर्स, ये इनका बड़ा करीबी दोस्त होता था, सारे गम में पड़े हुए, ये क्यों नहीं गम में, ये तो रोज आके नॉर्मल खाना खा रहा है। चेक किया, पता चला कि किसी गैंग के थ्रू उसने किसी को भी पकड़ना था, जब पकड़ा तो पता चला अपने ही दोस्त को पकड़ लिया, तो अब इस डर से कि इसने मुझे पहचान लिया उसने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन अब कत्ल को छुपाने के लिए आके रोज उनके होटल में आके बच्चों से दुख सुख करने लगा। शैतान इतना ही चलाक है। चलिए इसको भी समझ के आगे चलते हैं, यदि थोड़ा सा आपको लफ्जों के अंदर घूमना सिखा रही हूँ। फिर उसके बाद एक और चीज देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बनाया। लिखिएगा यहाँ दो लफ्ज साथ साथ चल रहे हैं, आदम और इबलीस, मैं दोनों का फर्क बताना चाहूंगी। आदम कौन है? जिनको आप अबुल बशर कहेंगे, लिखिए अबुल बशर। बशर कौन? इंसान, बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम यहां इसम जिन्स के तौर पर इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इबलीस कौन है? अबुल जिन। लफ्ज इबलीस को थोड़ा सा देखें, हमने इसको पीछे नहीं देखा। इबलीस अबलसा या अबलीसु से है, अफील का वजन, इंतहाई मायूस। यूस जिन का नाम है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और आदम को सजदा करने से इनकार किया। ये फरिश्ता नहीं था। सूरत तौहा में आप पढ़ेंगे कान मिनल जिन्नी फफासका अन अमरी रब्बी ही, वो जिन्नों में से था और इसने अपने रब के हुक्म से इनकार कर दिया था। उधर है अबुल बशर, तो इबलीस कौन है? अबुल जिन। कह लीजिए कि ये दो बापों की कहानी है, एक इंसानों के बाप आदम और एक जिन्नों के बाप यानी इबलीस की बात है। अब इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत मायूस है। किस चीज से मायूस है? बगैर सोचे आप बोलेंगे ना तो आप कहेंगे अल्लाह की रहमत से मायूस है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जन्नत से मायूस है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये भी लिख लीजिए आप। लेकिन जिस चीज से इबलीस है ना, वो मेरे आपसे मुतल्लिक है, ये लिख लीजिए। इसने खुद कहा था कि मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन इल्ला इबादा का मिन हुमुल मुखलसीन। इबलीस मुखलस बंदों को बहकाने से मायूस है। समझ आ गई बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर रजी अल्लाहु अन्हु जिस गली से गुजरते हैं ना, वो रास्ता बदल लेता है शैतान। डरता है उमर से, क्यों भला? क्योंकि उमर को बहकाने से शैतान मायूस था। इबलीस अबुल जिन, अब इबलीस की जरूरत है। दुनिया में जितने शैतान आज आपको फिरेंगे दिखेंगे, नजर आते हैं कि नहीं आते, ये उस इबलीस की नस्ल है, जैसे हम आदम की नस्ल है। ये दो मुख्तलिफ किरदार अल्लाह सुभान तआला ने साथ साथ पैदा कर दिए थे, और इसी इबलीस को जिन्नात का सरदार भी आप कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि इन सजदे का हुक्म तो फरिश्तों को कहा गया था, तो इधर जिन को सजदा कैसे, जिन को हुक्म कैसे हो गया? तो अरबी जुबान में कहते हैं तगलीब, अला सबील तगलीब, गलबे का सदका है। मतलब मैं आप सबसे कहूं कि आप सब यहां से निकल जाएं। अब आप में से हो सकता है कोई गेस्ट है, आप में कोई स्टूडेंट है, कोई अंसारुल्ला में से है, मैंने नाम तो नहीं लिया ना, लेकिन गालिब आ गई ये बात कि मैं चार को कह दूं तो सबको निकलना पड़े, तो गोया कि यहां उसको भी अल्लाह सुबहान तआला ने हुक्म दिया। असल में यहाँ वो कश्मकश दिखाई गई। देखिए फिर मैं कह रही हूँ कि हम इस कहानी पे इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी जिंदगी में शैतान का हम पे कंट्रोल या हमारा उससे बचने का रास्ता सिखा रही है। आज ही नियत की है, अगर कहीं भी मुझे मौका मिला मैं एक शॉर्ट कोर्स इस कहानी पे कराना चाहूंगी। कम से कम 3-4 घंटे चाहिए जिसमें हम पूरे इसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखें और पर्पस ऑफ लाइफ के नाते से कि जिंदगी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं खुद से ही मजबूर देखती हूँ, हारे हुए हैं। कोशिशों के बावजूद, ख्वाहिशों के बावजूद, इरादों के बावजूद शैतान ही बिलाखिर क्यों जीत जाता है? उसकी वजह इंशाल्लाह इस कहानी से हमें मिलेगी, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखिए कि ये जो बात हम पढ़ रहे हैं कि आदम और इब्लीस का जो किरदार दिख रहा है, इब्लीस किससे बना? आग से। नबी सल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म की मखलूकात हैं, इंसान मिट्टी से, फरिश्ते नूर से और शैतीन नार से पैदा हुए। एक बड़ी बारीक बात है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाऊंगी इंशाल्लाह आपको। इब्लीस है आग, मान ले शैतीन शैतान, और ये जो लफ्ज शैतान के हमने 2 रूट पढ़े थे ना औसु बिल्ला में, शैताना और शात से, शतन गहरे कुएं को बताया था और एक कुछ और। इसी तरह शात कहते हैं गुस्से से जल भुन जाना, गुस्से में भुना, यानी शैतान में आग है। अच्छा अब आप इमेजिन कीजिए कि आप खड़ी हैं, शैतान आपकी तरफ आ रहा है, आग को किस चीज से बुझाएंगे? पानी से। कुरान में वही इलाही को 2 चीजों से ताबीर किया गया, अनजल मिनस समाई मात फसालत भी औदियातुन। सूरत रात में आप पढ़ते हैं हक और बातिल की मिसाल, जिसमें अतवाम ममा यनफो नासु फयमकुस, शैतान की आग को वही के पानी से ही बुझा सकते हैं। बात समझ आ गई? आप जितना इल्मुल वही के करीब रहेंगे आप शैतान प्रूफ होंगे। मैं एक जुमला बोलती हूँ जानबूझ के, बात शायद समझा पाऊँ। इल्मुल वही शैतान प्रूफ जैकेट है। शैतान डरता है उस बंदे के पास आने से जिसके इस कुरान नहीं कुरान का इल्म होता है। हाफिज़े कुरान से नहीं शैतान डरता, क्योंकि उसके पास कुरान के अल्फाज हैं। जिसके पास कुरान का मानी मफहूम उसके ऊपर एप्लीकेशन है ना, शैतान उससे बहुत ज्यादा डरेगा। दूसरी चीज आप देखिए कि कुरान को कुरान पाक में नूर कहा गया है, अभी पीछे बढ़ चुके हैं। नूर क्या होता है? रोशनी। आग क्या है? शैतान। शैतान भी रोशनी है ना, एक आग की रोशनी होती है, गर्म रोशनी। जिया का लफ्ज भी थोड़ा सा आपसे शेयर किया था। शैतान को 2 ही चीजें भगा सकती हैं, या कुरान का पानी या कुरान की रोशनी। अब समझ आ गया तो लिख ले, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आगे जाके ये बातें बहुत दफा हमने पूरे सफर में करनी है। अल्लाह सुबहान तआला ने मुझे आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क बता दिया कि दुनिया में अगर शैतान को पीछे रखोगे तो कामयाब हो, और अगर शैतान के नक्शे कदम पे चलोगे तो नुकसान में हो। 3 दफा शायद जो आए थे, 2 दफा तो मुझे याद आ रही है अभी से, एक और भी जाएगा। ला तत्तबियू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन, दुश्मन है वो, उसके पीछे ना लगो। एक और चीज जो आपसे शेयर करनी थी वो क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म का तोहफा दिया, अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा, और आगे भी सबक के एंड में हमने गौर नहीं किया था, लेकिन फतलक्का आदमो मिन रब्बी ही, इन दोनों को जोड़ के कुछ चीजें करना चाहूंगी आदम अलैहिस्सलाम के किरदार पे। पहली बात तो लफ्ज आदम, आदम कहते हैं अदमत उनसे, अफल का वजन, गंदमी रंग, ठीक है? बाज कहते हैं उदमा, अलिफ पे पेश कर देंगे ना तो सुफेदी के मानी, यानी वाइटिश। आ पे जबर है तो वीटिश, आ पे पेश है तो वाइटिश, समझ आ रहा है? या गंदमी या सुफेदी माइल, दोनों तरह। और याद रखिए अरबी में सुफेदी माइल वो नहीं होता जो हमारे यहाँ जिसको वाइट कहते हैं, यानी गोरे जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा फर्क होता है। उस्वा और कुदवा के वजन पे है ना आदमा जैसे होता है। तो आदम कौन है? इमाम और पेशवा, यानी आदम का एक मानी आपको मट्टी का लिखा दिया। दूसरा आदमा तुन कह दें तो मुराद होता है उसवा। उसवा किसको कहते हैं? लकद कान अलकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना। कुदवा किसको कहते हैं? आपको पता है हदीस में ये लफ्ज बहुत आता है, कदम से, यानी जिसको फॉलो किया जाए। तो आदम का मानी हुआ इमाम और पेशवा। इसी तरह इसका एक और मानी है अदीम। अब ये डिफरेंट साउंड्स हैं, जो ना भी लिख सके ना, तो बस ये चार छह लफ्ज जितने को लिखते हैं वो लिख लें, ताकि आपको लफ्ज आदम के अंदर डूबना आ जाए। पहली बात स्किन कलर की तरफ इशारा, दूसरा बताया उस्वा यानी इमाम और पेशवा है, इसी तरह अदीम से कहें तो मानिए बालाई सतह जमीन, जमीन का ये जो ऊपर का क्रस्ट होता है ना सबसे ऊपर, आपको शायद पता होगा कि हमारी जमीन के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आप इसको ऐसे देखें स्लॉट, तो जैसे केक के अंदर से लेयर्स दिखती है ना, जमीन में भी सबसे ऊपर का जो क्रस्ट होता है ना उसको अदीम कहते हैं। तो मतलब क्या, बालाई सतह से बना गया। आदम को लेने के लिए अल्लाह ने जमीन को खोदा नहीं, ऊपर से डस्ट, जिसको अरबी में तुराब कहते हैं। ये कुरान में आप पढ़ेंगे, सूरह हिज्र में भी आता है, आदम की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल में, तो ऊपर ऊपर की सतह से जिसको बनाया गया। इसी तरह आप देखिए एक और इसकी तरकीब है, आप परेशान हैं लेकिन मैं खुश हूं। अदम दाल पे पेश डालिए, अदमुन यदमतुन, तो इसका मानी होता है उल्फत, मुवाफकत। तो आदम कौन हुआ? उल्फत करने वाला, मोहब्बत करने वाला। समझ आ गई ये बात? सिर्फ ये लफ्ज अलिफ दाल मीम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताए हैं। दाल पे जबर कर दें तो एक मानी, दाल पे पेश कर दें तो दूसरा मानी, और जबर को जेर में बदल दें तो मानी, लेकिन मानी क्या निकले? वीटिश, वाइटिश, इमाम या पेशवा, ऊपर की सतह से बना हुआ, और उल्फत और मुवाफकत करने वाला, यानी अल्लाह ने अपने बंदे के लिए रखा। अब बड़ी मजे की बात ये आ गई कि आदम अलैहिस्सलाम के एक नाम के अंदर इतना कुछ है, तो आप बताइए कि उनके अंदर खूबियां क्या होंगी। इस वाक्य पे गौर करें ना, तो हमें आदम अलैहिस्सलाम की कुछ खूबियां दिखी, वो कौन सी है नोट करें। और यहां ये भी लिख लीजिए कि आदम इज रिप्रेजेंटिंग अस, यानी आदम अलैहिस्सलाम इंसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने जो कुछ इंसान में डालना था ना, वो आदम में डाल दिया। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि आदम के जीन्स में जो चीजें थी ना, वो आज खुल खुल के इंसानों में आ रही हैं। जैसे कली होती है ना, वो छुपी होती है, उसके सब पत्तियां से झुचड़ी मुचड़ी होती हैं, फिर वक्त के साथ 2-3 दिन बाद फूल खिलता है, खिलता है, खुलता है, फिर कलियां खुल, फिर इतना बड़ा फूल बनता है पंखड़ियां। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने वो सब डाल दिया जो कियामत तक आने वाले इंसानों में एक्सपोज होगा। सबसे पहली चीज अल्लमा, इल्म हासिल करना। कोई मखलूक आपको इल्म हासिल करने वाली नहीं मिलेगी। आपको दुनिया में चिड़ियाओं की कोई यूनिवर्सिटी नजर आई कभी? तोतों का कोई स्कूल दिखा? बकरियों का कोई आपको इदारा नजर आया? नहीं, वो भां भां करेंगी, नहीं सीखेंगी। फिर दूसरी चीज सिखाना, सीखना और सिखाना। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये खूबियां डाल दी। फिर तीसरी चीज देखिए, अल्लाह की इताअत करना। जब अल्लाह ताला ने कहा कि अंबियोनी बताओ मेरे दिन के नाम, फलम्मा अम्बा, बता दिए। ये नहीं कहा क्यों बताऊं, कैसे बताऊं, ना बताया नहीं शर्म आती है, लोग हंसेंगे, गलत ना बोल दूं, नहीं बता दिया। फिर चौथी चीज तौबा करना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, गुनाह करके तौबा करना, ये आदम की तरफ से बच्चों को विरसे में मिला। फिर इसी तरह से आप देखिए जो चीज सेल्फ कॉन्शियस होना, कभी किसी परिंदे को आप शीशे में खड़े होकर अपने फेस को नहीं देखता हुआ पाएंगे। खूबसूरत है परिंदे, हम ही उनको देखते हैं। इंसान सेल्फ कॉन्शियस है, मैं कैसा लग रहा हूं। बस मैं आपसे कहूं कि आप जरा तर्जमा सुनाएं, तब कहेंगे शर्म आती है। किस बात पे? कि लोग आपको देखकर हंसेंगे, मैं गलत ना पढ़ दूं, मैं गलत ना बोल दूं, ठीक है। फिर इसी तरह मोहब्बत करना, और बहुत सारी चीजें मैंने बिलुल जन्ना में भी नोट कराई थी। खुलासा क्या है कि आज साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस, जो भी आपको मुझे उल्टी सिल्टी बहुत सारी अब चीजें अंदर दिख रही हैं, ये सब कुछ के बीच आदम के जरिए हम सब के बीच में मौजूद है। जो लोग इनको खोलते जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ये चीजें आसान करता जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और सवाल उठता है कि जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेजना था, फिर दुनिया में कुछ अरसा रहते, फिर जाके जन्नत ही देनी है ना, हम सब का अल्टीमेट गोल तो यही है ना, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को फरिश्ता ही बना देता जिनमें गुनाह कमादा ही नहीं है। सवाल समझ आए? जब इंसान से बिल आखिर मतलूब ही ये है कि फरिश्तों की तरह सरेंडर कर दे, तो ना बनाता अल्लाह दुनिया। ये क्या मुश्किल थी, इतनी जंगें लगी हुई हैं, कहीं तेल का मसला, कहीं बिजली का मसला, पानी का मसला। देखा जाए तो दुनिया का वर्स्ट पहलू देखें तो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, तो अल्लाह ताला वो भी ना बनाते। तो फिर इसका जवाब क्या है? यही तो इम्तिहान है, यही पर्पज ऑफ लाइफ, यही है वो बात कि इन्नी आलमु मा ला तालमुन। अल्लाह ने फरिश्तों को बता दिया तस्खीरे कायनात का काम इंसान करेगा। फरिश्तों के पास विल पावर नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? दे आर फोर्स टू डू दिस। लेकिन इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, इस दुनिया के जंगल में उसको फेंका और यहां से मुख्तलिफ कामों को कराया। और इंसान का दर्जा भी इसीलिए ज्यादा क्योंकि चॉइस के बावजूद काम को करता है। वो कहते हैं ना, मुश्किल है फरिश्तों से अफजल होना, लगती है इसमें मेहनत ज्यादा, कई इस किस्म के जुमले मौजूद हैं। और दूसरी बात है कि इंसान में अगर अल्लाह ताला ये गुनाह और सवाब का फर्क ना डालता तो दुनिया में फिर हक और बातिल की जंग कैसे लगती? इस्लाम में जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें दी हैं, जिसको आप कह लीजिए कि अल्लाह के निजाम को कैसे कायम कर सकता?